ये आकाशवाणी है। अब आप रत्ना पांडे से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनई की सफल यात्रा के बाद आज दोपहर सिंगापुर पहुंचे। वे सिंगापुर के अपने समकक्ष लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर वहां गए हैं। सिंगापुर के गृहमंत्री के शनमुगम ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। सिंगापुर पहुंचने पर प्रधानमंत्री का वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। शाम को सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने श्री मोदी के सम्मान में निजी तौर पर रात्रि भोज का आयोजन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री वोंग के साथ विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भारत सिंगापुर के साथ मित्रता को बहुत महत्व देता है। कल दोनों नेता भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर के राष्ट्रपति और अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात करेंगे। वे सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई भी देखने जाएंगे। प्रधानमंत्री करीब 6 साल बाद सिंगापुर की यात्रा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का सिंगापुर की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मिलने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति को और मजबूती मिलने की संभावना है। दोनों देशों के बीच हाल के दिनों में व्यापार और निवेश में लगातार वृद्धि हुई है। आसियान संगठन में सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक प्रमुख स्रोत भी है। इससे पहले आज भारत और ब्रुनई के बीच उपग्रह और प्रक्षेपण यानों के लिए टेलीमेट्री ट्रैकिंग और टेलीकमांड स्टेशन के संचालन में सहयोग के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि ब्रुनई भारत की एक्ट ईस्ट और हिंद प्रशांत क्षेत्र की नीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो दोनों देशों के उज्ज्वल भविष्य की गारंटी है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत पेंशन पाने वाले लोग अब 1 जनवरी 2025 से देश के किसी भी हिस्से में किसी भी बैंक में अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। इससे 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लाभ होगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की बड़ी उपलब्धि बताया है। केंद्र, त्रिपुरा सरकार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एनएलएफटी और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स एटीटीएफ के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। गृहमंत्री ने कहा कि एनएलएफटी और एटीटीएफ हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं और उन्होंने त्रिपुरा के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे 10 सितंबर से पहले सभी चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों की रिपोर्ट भेजें। स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को पत्र लिखा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में देशभर के 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित करेंगी। देश में हर साल 5 सितंबर को डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अमृत उद्यान कल शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षकों के लिए विशेष रूप से खुला रहेगा। राष्ट्रपति सचिवालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि प्रवेश राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से होगा। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज अपने 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से पार्टी उम्मीदवार होंगे। कैप्टन अभिमन्यू नारनौंद विधानसभा सीट से, जबकि अनिल विज अम्बाला कैंट से और श्रुति चौधरी तोसम सीट से चुनाव लड़ेंगी। कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार जीए मीर को समर्थन में अनंतनाग के दूरू स्पोर्ट्स स्टेडियम में इंडिया गठबंधन की एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। श्री मीर दूरू शाहबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। अपने भाषण में श्री गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी सभा को संबोधित किया। पेरिस पैरालंपिक्स के 7वें दिन सचिन सर्जेराव ने पुरूषों के शॉटपुट F46 में रजत पदक देश के नाम किया। उन्होंने एशियाई रिकॉर्ड 16.32 मीटर गोला फेंककर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।